أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. لاسٹ کلاس میں ایک سوال پوچھا تھا، اس کا میں پہلے جواب دے کے پھر انشاءاللہ ہم اپنا کلاس کا جو لیسن ہے وہ سٹارٹ کریں گے. بقرہ کے بارے میں پوچھا تھا، تو البقرہ جو ہے وہ اسم جنس ہے، اور اسم جنس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ میل اور فیمیل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اسی میں العجل جو کہ بنی اسرائیل کی واقعے میں جب بات ہوتی ہے تو اس میں استعمال ہوتا ہے کہ انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، تو وہ جو العجل ہے وہ ولد البقرہ ہوتا ہے. یعنی بقرہ چونکہ اسم جنس ہے اس لیے وہ فیمیل کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے اور میل کے لیے بھی، اور عجل جو ہے وہ بقرہ کے ولد کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی بچے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اس کو راؤنڈ تا کے ساتھ لکھا جاتا ہے، اور جیسے سورۃ البقرہ ہے اسی اس کے نام پہ، اور اس کی جو پلورل ہے وہ البقرات ہے، یعنی را کے بعد الف تا کے اضافے کے ساتھ. پھر ہم لوگوں نے جیسے اپنی جو لاسٹ کلاس تھی اس میں ہم لوگوں نے مؤنث کو پڑھا تھا، مذکر مؤنث کو، جو کہ ہم نے دیکھا تھا کہ اسم کو ہم جب کسی بھی اسم کو پہچاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں چار چیزوں کا علم ضروری ہے، ایک اعراب، اور دوسرا جنس، جنس کے اعتبار سے مذکر اور مؤنث، اس کو ہم لوگوں نے ڈسکس کر لیا تھا. پھر ہم تھرڈ نمبر پہ عدد کو ہم نے شروع کیا تھا. عدد میں ہم نے دیکھا تھا کہ واحد ہر وہ اسم جو کہ ایک کسی بھی چیز کے اوپر دلالت کرے تو وہ واحد ہوتا ہے، اور پھر ہم نے مثنی کو دیکھا کہ جو اسم دو کسی بھی دو عدد کی چیز کو ظاہر کرتا ہے اس کو ہم مثنی کی کیٹیگری میں رکھتے ہیں. اور پھر ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ ہمارے پاس حالت رفع اور حالت نصب اور جر، اس میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا کہ مثنی حالت رفع میں کس طرح سے ہوتا ہے اور حالت نصب اور جر میں کیسے ہوتا ہے، اور اس میں ہم نے اس کی تبدیلی کے سٹیپس بھی دیکھے تھے کہ حالت رفع میں ہم فتحہ دے دیتے ہیں لاسٹ لیٹر کو اور الف نون کا اضافہ کر دیتے ہیں، اور جبکہ حالت نصب میں ہم لاسٹ لیٹر کو فتحہ دے کے یا نون کا اضافہ کر دیتے ہیں. پھر اس میں جیسے میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ جب آپ حالت رفع میں چینج کرتے ہیں تو نون کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی جیسے قلمن ہے تو قلمانی بن جاتا ہے، اور اسی طریقے سے حالت نصب اور حالت جر میں ہم نون کسرہ کے ساتھ، یہاں پر بھی ہم جو یا نون کا اضافہ کرتے ہیں اس میں ہم نون کسرہ کے ساتھ لکھتے ہیں، جیسے رجلن اور رجلینی. تو یہاں پہ جیسے ہم لوگوں نے اعراب میں ایک چیز کو ڈسکس کیا تھا کہ جو حرکات ہیں ان کو ہم نے یہ بات بالکل کلیئر کی تھی کہ وہ اعراب کے اندر نہیں آتے، اور یہاں پر ہمیں اس کی ایک مثال بھی مل رہی ہے کہ قلمانی نون کسرہ کے ساتھ ہے لیکن یہ حالت رفع میں ہے، اور حالت رفع پھر اس کے بعد رجلینی، یہ جو رجلینی یا رجلینی دونوں مثنی کی کیٹیگری میں آتے ہیں، تو اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ہمیں نون کسرہ کے ساتھ ملتا ہے، اور یہ جو ورڈ ہے یہ حالت نصب اور حالت جر ان دونوں کو ظاہر کرتا ہے. پھر اس میں میں ایک حدیث آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، جیسے جس میں جو مثنی ہے اس کی کافی ساری ہمیں الفاظ اس کے ملتے ہیں اس حدیث میں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلیمتانی حبیبتانی الی الرحمن، کلیمتان حالت رفع ہے ہمارے پاس جو مثنی ہے اس کی کلیمتن کی، اور حبیبتان یہ بھی حبیبتن کی مثنی ہے ہمارے پاس، یہ دونوں جو ورڈز ہیں یہ مثنی کی کیٹیگری میں ہیں. کلیمتانی حبیبتانی الی الرحمنی خفیفتانی علی اللسان، خفیفتان خفیفتن سے مثنی ہے، خفیفتان حالت رفع میں ہے یہ بھی، और खफीफतानी अल निसानी सकीलतानी फिल मीजानी, सकीलतान ये भी हालत रफ और मुसन्ना की मिसाल है हमारे पास। और वो क्या कलिमात हैं जो कि अल्लाह ताला के नजदीक बहुत महबूब हैं लेकिन जबान के ऊपर बहुत हल्के हैं और मीजान में बहुत भारी हैं, वो कलिमात हैं सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। फिर ये जो मुसन्ना है इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में, इसका हमने बनाने का तरीका भी देख लिया था कि इसमें हम हालत रफ में किस तरीके के साथ बनाएंगे और हालत नसब और हालत जर में किस तरीके के साथ इसको बनाएंगे। फिर हमारे पास जो अदद के अतबार से तीसरी नंबर पे जो कैटेगरी आती है वो जमा की है। जमा को शुरू करने से पहले मैं कुछ उर्दू से मिसालें आप लोगों को दूंगी ताकि इसको हम अच्छे तरीके से समझ सकें। जैसे हमारे पास एक लफ्ज है किताब, किताब को अगर हम देखें तो हम उर्दू में किताबों इस्तेमाल करते हैं, किताबें, और या फिर हम कुतुब कहते हैं, यानी जो अगर हम किताब की जो उर्दू में जमा इस्तेमाल करते हैं उसको हम देखें तो ये दो तीन जमे हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। और नबियों की जो नबी है, नबी सिंगुलर, उसकी हम जो जमा उर्दू में इस्तेमाल करते हैं वो नबियों है या अंबिया। और इसी तरीके से अगर हम इंग्लिश में देखें तो हम लोग बचपन में इस चीज को समझते हैं कि एस या ई एस ये दो होते हैं नॉर्मली, यानी ज्यादातर हम किसी भी सिंगुलर के आगे एस या ई एस ऐड कर दें तो वो जमा की कैटेगरी में वाहिद जो है, वाहिद वर्ड वो जमा बन जाता है। जैसे बुक है बुक्स, बेंच बेंचेस, तो इस तरीके के साथ हम जमा बनाते हैं। और इसमें फिर अगर हम इसी तरीके के साथ हम अरबी को देखें तो अरबी में भी जमा हमारे पास इसी तरह तरह से बनती है कि एक तो जमा सालिम होती है और दूसरी जमा मुकस्सर होती है। इसमें जैसे अगर हम उर्दू की मिसाल जैसे मैं आपको दे रही थी कि किताब से किताबों की जो जमा हम इस्तेमाल करते हैं या नबी से जो नबियों की जमा इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो वाहिद है उसके आगे हम कोई ना कोई एडिशन कर रहे हैं और उससे फिर जमा बन रहे हैं बना रहे हैं। लेकिन जो किताब से कुतुब या नबी से अंबिया की जो जमा है उसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारा वाहिद में जो यानी अल्फाज की तरतीब है, हुरूफ की तरतीब, वो बिल्कुल अब्रप्ट हो गई है, यानी वो टूट गई है कुतुब में या अंबिया में। तो इसी तरीके से ये जो जमा की दो कैटेगरीज मैंने अभी आपको बताई कि अरबी में इस्तेमाल होती हैं, जमा सालिम और जमा मुकस्सर, तो इसमें जो जमा सालिम है उसको हम इसी तरीके के साथ इस कैटेगरी में लेके आते हैं कि जब आप वाहिद के आगे किसी भी चीज को ऐड कर देते हैं, कोई भी लेटर्स ऐड कर देते हैं, तो उससे वो वाहिद लफ्ज जमा में चेंज हो जाता है। जबकि जो जमा मुकस्सर है उसमें क्या होता है कि अल्फाज की तरतीब को आप चेंज कर देते हैं, आगे पीछे कर देते हैं, और उस तरीके के साथ जो जमा बनती है वो फिर जमा मुकस्सर की कैटेगरी में आ जाता है। इसमें जमा सालिम को अगर हम देखें तो जमा सालिम मुजक्कर मौनस के अतबार से भी मुख्तलिफ होती है और एराब के अतबार से भी मुख्तलिफ होती है। जैसा कि हमने मुसन्ना में जब देखा था तो हमने इस चीज को डिस्कस किया था कि जो मुसन्ना हम बनाते हैं वो सिर्फ एराब के अतबार से मुख्तलिफ होती है, उसमें मुजक्कर या मौनस के अतबार से कोई डिफरेंस नहीं पाया जाता। इस चीज को हमने डिस्कस किया था कि जो हम दो स्टेप्स मुसन्ना के बनाने में हम इस्तेमाल करते हैं हालत रफ में या हालत नसब और जर में, वो मुजक्कर और मौनस के अतबार से उनमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। जबकि जमा सालिम में हमें इस चीज को भी ध्यान रखना पड़ता है कि मुजक्कर और मौनस के अतबार से क्या चेंजिंग होंगी और एराब के अतबार से भी मुख्तलिफ होती है जो जमा सालिम की, यानी अगर हम एराब में हालत रफ देख रहे हैं तो वो डिफरेंट होगी और हालत नसब डिफरेंट होगी इस तरह से। इसमें जो हम हालते रफ को अगर देखें तो जमा सालिम बनाने में यानी किसी भी मुजक्कर किसी भी वाहिद अदद को जब हम जमा सालिम में चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास दो स्टेप्स हैं। हालत रफ को पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम हालत नसब और जर पे जाएंगे। तो हालत रफ में हमारे पास दो स्टेप्स हैं। इसमें क्या है, इसमें हालत रफ में हम सबसे पहले जो लास्ट लेटर है वाहिद का उसको हम दम्मा देके उसके आगे सेकंड स्टेप में हम वाव नून का इजाफा कर देते हैं। और नून जो है वो फतहा के साथ होता है। जैसे अगर हम एक मिसाल इसमें ले लें मुस्लिमुन की, तो मुस्लिमुन मीम को हम दम्मा देंगे और इसके आगे हम वाव नून की एडिशन कर देंगे, यानी मुस्लिमुना नून फतहा के साथ। इसी तरीके से काफिरुन, काफिरुन को जब हम हालत रफ में जमा में तब्दील करना चाहेंगे तो इसमें हम काफिरु यानी रॉ को बमा देके उसके आगे वाव नून की एडिशन कर देंगे, काफिरु ना। और इसी तरीके के साथ अगर हम मुनाफिकुन को चेंज करना चाहते हैं हालत रफ में तो इसमें हम काफ को बमा देके वाव नून की एडिशन कर देंगे, मुनाफिकु ना। और इसी तरीके से सालिहुन, सालिहुन को जब हम चेंज करेंगे जमा सालिम में तो सालिहुना बन जाएगा। अब यहाँ पर जितने भी मैंने अल्फाज की आपको मिसालें दी हैं वो सब मैंने मुजक्कर इस्तेमाल किए हैं, कि जैसे मुस्लिमुन है मुजक्कर है, मुस्लिमतुन इसकी मुअन्नस हो जाएगी। तो अभी हम मुजक्कर के एतबार से अभी हमने देखा है कि हालत रफ में अगर हम मुजक्कर वाहिद को चेंज करना चाहते हैं जमा में तो उसके लिए हम पहले स्टेप में जो लास्ट लेटर है उसको बम्मा देके उसके आगे बाउनून की एडिशन कर देंगे। इसी तरीके से मुजक्कर ही को हम आगे लेके चलेंगे कि अगर हम मुजक्कर वाहिद को जमा बनाना चाहते हैं उसकी जमा सालिम तो हालत नसब और हालत जर में उसकी किस तरीके के साथ चेंजिंग होगी के लास्ट लेटर को यानी वाहिद के लास्ट लेटर को हमने देनी है कसरा और उसके आगे हमने या नून नून फतहा के साथ हम उसके आगे ऐड कर देंगे। फिर वही जो अल्फाज ऊपर मैंने इस्तेमाल किए थे उन्हीं को मैं आपको चेंज करके दिखाती हूँ हालत नसब और हालत जर में, कि मुस्लिमुन मीम को कसरा देंगे और या नून नून फतहा की एडिशन कर देंगे, मुस्लिमीना, काफिरुन काफिरुन से काफिरीना, मुनाफिकुन मुनाफिकुन से मुनाफिकीना और सालिहन सालिहन से सालिहीना। तो यहाँ पर हमने इस चीज को देख लिया कि जब हमारे पास मुजक्कर अगर कोई वाहिद है तो उसकी हमने जमा सालिम जब बनानी है तो हालत रफ और हालत नसब और हालत जर में उसका क्या तरीका कार होगा। हालत रफ में बमा देके वाव नून ऐड कर देंगे और हालत नसब और हालत जर के लिए सेम प्रोसीजर है कि लास्ट लेटर को हमने कसरा देनी है वाहिद के और उसके आगे या नून की एडिशन कर देनी है। तो ये जो है ये हमने जमा सालिम में मुजक्कर को चेंज करने का जो एक तरीका है वो हमने इसमें डिस्कस कर लिया है। और जो जमा मुकस्सर है उसको हम इंशाल्लाह जमा सालिम के बाद डिस्कस करेंगे। और इसमें जैसे अभी हमने मुजक्कर को डिस्कस किया जमा सालिम में तो अब हम मुअन्नस की तरफ आते हैं कि मुअन्नस को हम जमा सालिम में किस तरीके के साथ चेंज करेंगे। तो इसमें तमाम मुअन्नस को चेंज करने का कोई बाकायदा आपको रूल्स नहीं मिलते। हम सिर्फ ताए मरबूता जिनके आखिर जिन मुअन्नस वाहिद की सूरत में जिन मुअन्नस की हमें ताए मरबूता अलामत मिलती है, जैसे हमने देखा था कि अलिफ मकसूरा भी है और अलिफ ममदूदा भी है मुअन्नस की अलामत में, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ उस मुअन्नस को डिस्कस करेंगे जिसके आखिर में ताए मरबूता है यानी गोलता है। तो इसमें जब भी हमें किसी वाहिद लफ्ज में राउंड ता आखिर में मिलेगी तो उसमें हम उसको तब्दील करेंगे जब हम जमा सालिम में तो उसका क्या तरीका कार होगा कि पहले पहले सबसे पहले तो हम ताए मरबूता को महजूफ कर देंगे यानी उसे हटा देंगे और फिर हम अलिफ ता ऐड कर देंगे उसके आखिर में। और इसमें भी हमारे पास हालत रफ और हालत नसब और हालत जर का डिफरेंट तरीका कार है। हालत रफ को हम सबसे पहले देखते हैं, जैसे मुस्लिमतुन लफ्ज है तो इसकी अगर हम जमा सालिम बनाना चाहते हैं, इस मुअन्नस लफ्ज की अगर हम जमा सालिम बनाना चाहते हैं हालत रफ में, तो वो कैसे होगी? मुस्लिमतुन से पहले हमने ताए मरबूता हटाई और उसके आगे अलिफ ता ऐड किया मुस्लिमातुन, और यहाँ पे हम वमा तन्वीन लास्ट वर्ड को दे देंगे मुस्लिमातुन। जन्नतुन से जन्नातुन, आबिदतुन से आबिदातुन, काफिरतुन से काफिरातुन, सालिहतुन से ता राउंड ता को हटा के अलिफ ता ता बमा तन्वीन के साथ ऐड करेंगे सालिहातुन, और इसी तरीके से मुमिनतुन से मुमिनातुन और फासिकतुन से फासिकातुन। यहाँ पर आप देखें कि जैसे पहले हमने जो हरकात देखी हैं वो हमारे पास सिंगल आ रही थी मुसन्ना में भी और जमा में भी, लेकिन यहाँ पर जो हमें हरकात मिल रही हैं मुअन्नस जमा सालिम की, उसमें हमने देखा है कि हमने बमा तन्वीन दी है लास्ट लेटर को। फिर हालत नसब और हालत जर में जो तब्दीली है वो एक ही तरीके के साथ होगी, और उसमें भी हम सबसे पहले स्टेप में ताए मरबूता को महजूफ कर देंगे और फिर हम अलिफ ता ऐड करेंगे लेटर के एंड में, लेकिन अलिफ ता कसरा तनवीन के साथ ऐड करेंगे। अलिफ ता फतहा तनवीन के साथ आपको नहीं मिलेगा, यानी हालत नसब और हालत जर दोनों में हमने जो अलिफ ता ऐड करनी है वो हम कसरा तनवीन के साथ करेंगे। इसमें हम कुछ मिसालें देख लेते हैं, जैसे मुस्लिमतुन है मुस्लिमतन या मुस्लिमतिन, हालत नसब और हालत जर के हिसाब से अगर हम देखें तो पहले हम रामता को निकाल देंगे और अलिफ ता ऐड करेंगे ता कसरा तनवीन के साथ मुस्लिमातिन, और इसी तरीके से काफिर तन या काफिरतिन को अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो राउंड ता हटा के हमने अलिफ ता ऐड की और अलिफ ता के नीचे कसरा तन्वीन दी काफिरतिन। इसी तरीके से मुमिनतन या मुमिनतिन को अगर हम चेंज करना चाहते हैं जमा में तो मुमिनातिन, कसरा तन्वीन के साथ अलिफ ता ऐड करेंगे हम। फिर इसी तरीके से सालिहतुन सालिहतन या सालिहतिन को अगर हम जमा में तब्दील करना चाहते तो सालिहातिन, और इसी तरीके से फासिकतन या फासिकतिन को अगर हम चेंज करेंगे जमा में तो फासिकातिन। ये हमारे पास हमने देख लिया कि किसी भी मुअन्नस को जब हम ताए मरबूता वाली मुअन्नस को जमा में तब्दील करना चाहते हैं तो उसके हमारे पास क्या स्टेप्स होंगे। अब यहाँ पर हम लोगों ने जमा सालिम को चेंज करने की जो तरीका कार है उसको हमने देख लिया। अब यहाँ पे आप अगर साउंड्स को थोड़ा सा जज करें तो जैसे मुसन्ना में हमने देखा था कि हालत रफ में आनी की साउंड आखिर में आती है, जैसे कलमानी वलदानी बैठानी, और हालत नसब या जर में ऐनी की साउंड आती है रिजलैनी रजुलैनी गुरफतनी। फिर इसी तरीके से जमा सालिम को अगर हम मुजक्कर के अतबार से देखें तो हालत रफ में ऊना की साउंड आती है काफिरूना मुनाफिकूना मुस्लिमूना, और इसी तरीके से हालत नसब या हालत जर में अगर हम देखें तो ईना की साउंड हमें मुजक्कर सालिम की सुनाई देती है, जैसे मुस्लिमीना काफिरीना मुनाफिकीना। तो इसी चीज को अगर हम देख के तो थोड़ी सी कुरान मजीद से आयात में से मिसालें ढूंढें अगर तो इसमें हम आ जाते हैं सूरतुल बकरा की आयत नंबर 43। वइज नजैनाकुम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون. यहाँ पे हमें एक ऊ ना की साउंड युज़बीहूना में मिल रही है. अगरचे ये जो लफ्ज है ये वो नहीं है, इस्म नहीं है, लेकिन हमें ऊ ना की साउंड यहाँ पर मिल रही है इस लफ्ज के अंदर. फिर अगर हम सिर्फ और सिर्फ देखें जो हमें कुछ ऐसी मिसालें मिल जाएं जो इस्म के अस्मा के अंदर आए, क्योंकि यहाँ पर जो ज्यादातर मिसालें इन आयात में आ रही हैं वो अफाल की आ रही हैं. हाँ, आया नंबर 51 के एंड में अगर हम देखें तो हमें एक इस्म की मिसाल मिलती है, तुम اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. ظالمون में हमें ऊना की साउंड आखिर में मिल रही है, ظالمون से ظالمون. फिर आगे अगर हम इसकी कोई मिसाल इस्म के अतबार से खास तौर पर देखें तो ये हमें आया नंबर 58 के बिल्कुल आखिर आखिर में मिल रही है, वो इस قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. محسنین میں جو ہمیں مثال مل رہی ہے یہ اسم کی ہے, اور یہ ہمیں حالت نصب اور حالت جر کی ایک مثال ملی ہے. جو اس سے پہلے ہمیں ملی تھی وہ حالت رفع کی تھی, اونا کی ساؤنڈ آ رہی تھی اور یہاں پر اینا کی ساؤنڈ آ رہی ہے محسنین. تو یہ یہاں پر ہمیں حالت نصب اور حالت جر کی ایک مثال مل گئی. پھر اسی طریقے سے ہم اگر آیا نمبر 60 کا لاسٹ ورڈ دیکھیں, وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. مُفْسِدِينَ میں بھی ہمیں مثال مل رہی ہے جو حالت نصب اور حالت جر میں مذکر جمع سالم کی مثال ہمیں مل رہی ہے اس میں. پھر اسی کو اگر ہم آگے انہی آیات میں دیکھیں تو آیا نمبر 64 میں ہمیں مل رہی ہیں فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. مِنَ الْخَاسِرِينَ میں ہمیں یہ مثال ملی ہے. یہ سب سورۃ البقرہ کی آیات میں ہیں, شاید میں پہلے شروع میں بتانا بھول گئی. تو یہ جو الخاسرین کا لفظ ہے یہ بھی ہمیں جمع مذکر سالم کی مثال مل رہا ہے, الخاسرین حالت نصب اور حالت جر میں. اسی طریقے سے جو 65 آیا اینڈ والا ورڈ ہے خاسئین, یہ بھی ہمیں حالت نصب اور حالت جر والی ایک مثال مل رہی ہے. ابھی اصل میں میں کوئی چیز کو اسپیسیفائی اس لیے نہیں کری کہ یہ کون سی حالت ہے, حالت جر ہے یا حالت نصب ہے, کیونکہ ابھی ہم نے اس چیز کو ڈسکس نہیں کیا. تو جو الفاظ کو صرف ہم ان کا انالیسس کریں گے, باقی جو جملے میں ان کی کیا پوزیشن بن رہی ہے یہ جب ہم تھوڑا سا زیادہ پڑھ چکیں گے تو اس کے بعد ہم ان سب چیزوں کا انالیسس کریں گے. پھر آیا نمبر 66 کے اینڈ میں دیکھیں اگر ہم تو وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. متقین بھی ہمیں حالت نصب اور حالت جر کی ایک مثال مل رہی ہے. پھر آیا نمبر 67 کے آخر میں بھی ان اکون من الجاہلین. جاہلین بھی ہمیں ایک جمع سالم کی مذکر کی مثال مل رہی ہے جو کہ ہمیں حالت نصب اور حالت جر کی ایک مثال ملی ہے. تو اس میں آپ لوگ جمع جو سالم ہے اس کے لیے آپ ہوم ورک لکھ لیں کہ آپ نے جمع سالم کی حالت رفع اور حالت نصب کے اعتبار سے مذکر میں بھی مثالیں ڈھونڈنی ہیں اور مونس میں بھی مثالیں ڈھونڈنی ہیں, پانچ پانچ. یعنی آپ نے جمع مذکر سالم کی حالت رفع میں پانچ مثالیں और जमा मुजक्कर सालिम की हालत नसब और हालत जर में पांच मिसालें कुरान मजीद से ढूंढनी है, और मुअन्नस में भी, मुअन्नस में हमें ये बात पता है कि अलिफ ता सिर्फ हमने राउंड ता वाली जो एग्जाम्पल्स हैं उन्हीं को हमने डिस्कस किया है, उन्हीं को आपने सर्च आउट करना है हालत रफ और हालत नसब या जर में। तो इनशाला ये जो दो हमारा जो लास्ट होमवर्क है वो भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जो मुसन्ना का मैंने आपको दिया हुआ था, और जो जमा का होमवर्क है वो भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ तक हम जमा सालिम को देख चुके, अब हमारी जो नेक्स्ट जमा है वो जमा मुकस्सर है। अब जमा मुकस्सर क्या होती है कि जमा मुकस्सर में जैसे मैंने आपको शुरू में जब ये मिसालें देना शुरू की थी तो उर्दू से कुछ मिसालें दी थी कि किताब की जमा हम कुतुब उर्दू में इस्तेमाल करते हैं या नबी की अंबिया। तो ऐसी जमा जिसमें वाहिद के हुरूफ की जो तरतीब है वो बिल तरतीब ना रहे बल्कि वो टूट जाए, उसकी तरतीब बिल्कुल अब्रप्ट हो जाए, तो ऐसी जमा को जमा मुकस्सर कहते हैं। जैसे मुकस्सर नाम से भी थोड़ा सा पता चल रहा है कि टूटी हुई मुकस्सर चीज को बोलते हैं, टूटी हुई चीज को। तो जो जमा मुकस्सर है वो हमारे पास उसमें वाहिद हुरूफ वाहिद कलिमा के जो लेटर्स की तरतीब है वो आगे पीछे हो जाती है। फिर इसमें हमारे पास कुछ जमा मुकस्सर में कुछ अवजान होते हैं, और इसको पहले यानी जमा मुकस्सर को समझने से पहले हम ये भी चीज देख लें कि कुछ अवजान हैं जिनके ऊपर हम यानी जिनको हम कह सकते हैं कि ये जमा मुकस्सर के कुछ स्पेसिफिक अवजान हैं, और उन्हीं की एतबार से फिर वाहिद में हम जमा मुकस्सर को चेंज करते हैं। तो इसमें जैसे हमारे पास कुछ अवजान अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे कलम उन इसम वाहिद है, और कलम उन की जमा जो हम इस्तेमाल करते हैं वो अकलाम उन है। अकलाम उन में अगर आप देखें तो जैसे रूट वर्ड का शायद आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि हम जो भी अरबी के अल्फाज को देखते हैं तो उनके को यानी वो बेशक जितने भी उसके अंदर लेटर्स हों किसी भी लफ्ज के अंदर उसके जो बेसिक लेटर्स हैं वो थ्री होते हैं या फोर होते हैं। तो जैसे अगर हम कुछ अल्फाज को देखें अकलाम उन अबुआब उन, तो इनमें जो हमें बेसिक रूट लेटर्स मिल रहे हैं वो तीन तीन हैं। जैसे अकलाम उनमें कलम है, और इसमें आप ये चीज भी देखें कि अगर हम सिर्फ वाहिद और जमा के अतबार से इस चीज को देखें तो कलम उन तीन लफ्ज हैं वाहिद में, फिर जब वो वाहिद से प्लूरल में जा रहा है तो अकलाम बन रहा है। तो जो वाहिद के थ्री बेसिक लफ्ज लेटर्स हैं वही हमें जमा के भी रूट वर्ड्स में यानी रूट वर्ड को जज करने के लिए हमें चीज आसान रहेगी। और इसी तरह से अगर हम बाप को देखें तो बाप की जो जमा मुकस्सर इस्तेमाल होती है अरबी में वो अबवाबुन है, तो इसमें भी आप बाप को देखें बा अलिफ और बा, ये इसके थ्री रूट लेटर्स हो गए, और यही फिर बेसिक रूट लेटर्स जो है वो अबवाबुन में चेंज हो गए। यानी अबवाबुन का भी रूट लेटर और बाबुन का सेम है। फिर इसी तरह से जिक्रुन अगर आप देखें तो जिक्रुन के थ्री रूट लेटर्स वाहिद में हमें पता चल रहे हैं जाकारा, और यही रूट लेटर्स फिर आगे अगर हम इसकी जो जमा इस्तेमाल होती है अजकारुन, अजकारुन में भी जो आपको रूट लेटर्स हैं वो यही तीन मिलेंगे। तो यानी अगर हम इन जो जमे जमा इस्तेमाल हो रही है जमा मुकस्सर उसकी अगर हम वाहिद को देखें तो हमें उससे थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि रूट लेटर्स कौन से हैं। ठीक है, अब इसमें अगर मैं आपको कुछ जमा बताऊं यानी कुछ वाहिद की जमा मैं आपको बताऊं तो उसमें फिर हमें वजन उसका किस तरीके के साथ इस्तेमाल होता है वो फिर हम आखिर में निकालते हैं। जैसे कलम उन की जमा है अकलाम उन, बाबुन की जमा है अबवाबुन। ये सारी जो यानी जमा मैं आपको बता रही हूँ अगर ये आप एक लाइन में लिखें तो आपको फिर वजन जज करने में और वजन क्या चीज है इसको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। जिक्रुन से अदकारुन जमा मुकसर इस्तेमाल होती है, तिफलुन से अतफालुन, और आमलुन से आमालुन। इन सारे लेटर्स को अगर आप एक लाइन में यानी लिखें, तो फिर आपको पता चलेगा कि इनमें कॉमन क्या चीजें हैं, कि सारे लेटर्स के स्टार्ट में हमजा आ रहा है। फिर हमजा के बाद जो हमें नेक्स्ट लेटर मिल रहा है वो ऑल्दो चेंज है, जैसे कलम उनमें अकलाम उन काफ है, अबवाब उनमें बा सेकंड लेटर है, अजकार उनमें जा सेकंड लेटर है, लेकिन एक चीज कॉमन है कि जो सेकंड लेटर है वो साकिन है। ठीक है, तो अगर हम कॉमन चीजें इसकी देखें, फिर उसके बाद इसी तरीके से जो थर्ड लेटर है वो भी तमाम जमा में चेंज है, लेकिन थर्ड लेटर की जो हरका है यानी फतहा आई है हमारे पास थर्ड लेटर में, वो सब में सेम है। फिर उसके बाद जो फोर्थ लेटर अगर हम देखें तो वो तमाम में एक ही है, वो अलिफ है। अकलाम, अबवाब, अजकार सब में अलिफ है। और इसी तरीके से अगर हम सबसे आखिरी लेटर देखें, फिफ्थ वन, तो वो सब में चेंज है लेकिन उसकी हरका सेम है और वो बम्मा तनवीन है। तो इसमें जो हमने यानी जो एक सेम सेम चीजें हमने इन तमाम वर्ड्स में निकाली वो क्या, कि सबसे पहले हमजा, फिर उसके बाद सेकंड लेटर के ऊपर साकिन सुकून, फिर थर्ड के ऊपर फतहा कॉमन है, फोर्थ लेटर कॉमन है अलिफ, और लास्ट जो फिफ्थ वन है उसके ऊपर बम्मा जो है वो कॉमन है। फिर यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं फर्स्ट और फोर्थ लेटर, ये तो हमारे पास दो लेटर्स कॉमन है। फिर इसमें अगर हम वजन को देखें तो जो अरबी में ओजान इस्तेमाल होते हैं वो फाला, फा, आइन और लाम, ये इन इनके ऊपर आप इनको बेसिक लेटर्स करार देने के बाद इन्हीं के ऊपर तमाम ओजान को इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम यानी हमजा के बाद फा को फिट कर दें, फिर थर्ड लेटर हम आइन करें, और फोर्थ हमारे पास तमाम में जैसे तमाम ऊपर जो हमारे पास अल्फाज आ रहे थे उनमें फोर्थ वन अलिफ था, और एंड वाले को हम अगर लाम दे दें यानी फाला, जैसे हमने अभी इस चीज को डिस्कस किया कि जो फाला है इसी के ऊपर तमाम ओजान आते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास इन तमाम जमा मुकसर जो मैंने अभी आपको बताई उसका अगर हम एक वजन डिफाइन करें तो वो अफालुन है। और अफालुन में आप देखें कि जो फा, आइन और लाम है ये असल में बेसिक रूट लेटर्स हैं। अब अगर आप इन्हीं जमा मुकसर की जो मैंने आपको मिसालें दी उनमें आप फा, आइन और लाम को देखें तो आपको रूट लेटर्स पता चल जाएंगे तमाम हरूफ के। अकलाम उनमें काफ, लाम और मीम, ये फा, आइन और लाम के वजन पे आ रहे हैं। फिर इसी तरीके से अबवाब उनमें बा, वाव और बा, ये थ्री लेटर्स आपको रूट लेटर्स में पता चल रहे हैं। तो ये जो फा, आइन और लाम हमें किसी भी वजन में इस्तेमाल होता हुआ मिलता है, यहाँ पे तो अभी आपको एक मिसाल मिल रही है, फिर आगे आगे जमा मुकस्सर में जब मैं आपको और ज्यादा बताऊंगी तो उसमें भी फिर आपको रूट लेटर्स भी पता चलेंगे कि किसी भी वर्ड का रूट लेटर कैसे फाइंड आउट हुआ है। वो फा, आइन और लाम के मुतबादल जिस भी लफ्ज में इस्तेमाल होंगे वो उसके रूट लेटर्स होंगे। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ आई होगी कि जो अफालुन है वो इनके वजन किस तरह से है, कि अकलामुन अफालुन, अबुआबुन अफालुन, यानी एक ही तरह से आपको इनकी हरकात मिल रही हैं और फर्स्ट एंड फोर्थ लेटर आपको बिल्कुल कंबाइन मिल रहा है। तो यहाँ पर ये जो अफालुन है ये जमा मुकस्सर का एक वजन है। अब मैंने तो आपको जमा मुकस्सर के जो अफालुन के ऊपर अप्लाई होने वाले कुछ वर्ड्स की एग्जांपल दी है, लेकिन अगर आप इस चीज को याद कर लेंगे कि जमा मुकस्सर के कुछ स्पेसिफिक औजान जो हम अभी क्लास में डिस्कस करेंगे वो कौन कौन से हैं, तो ये चीज आपको यानी कुरान मजीद में जो भी लफ्ज अफालुन के वजन पे आएगा आप उसको जज कर सकते हैं कि ये जमा मुकस्सर है, क्योंकि जमा मुकस्सर बनाने का कोई एक स्पेसिफिक कायदा नहीं है। तो इस वजह से हम अगर इन औजान को याद करें और इन औजान के ऊपर फिर हम देख लें कि कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं कुरान मजीद में, तो उससे हमें फिर थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगी कि जमा मुकस्सर यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है। तो ये जो कुछ अल्फाज मैंने आपको अभी बताए वो अफ़ाल उनके वजन के ऊपर थे जमा मुकस्सर में। अब अगर हम दूसरा वजन देखें तो उसमें मैं आपको कुछ मिसालें पहले दूंगी जिनको आप अगर अपनी कॉपी पे लिख लें तो फिर एंड में आपको उसका वजन समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। जैसे जबलुन अरबी में पहाड़ को कहा जाता है, तो जबलुन से जिबालुन, जिबालुन जमा मुकस्सर है इसकी। इसी तरह जमलुन, जमल ऊंट को कहा जाता है, जमलुन से जिमालुन जमा मुकस्सर है जो कि जमल की इस्तेमाल होती है। फिर आब्दुन गुलाम को कहा जाता है, आब्दुन से इबादुन जमा मुकस्सर इस्तेमाल हो रही है इसकी जो आपकी जमा है। फिर बहरुन, बहर बोलते हैं दरिया को अरबी में, बहरुन से बिहारुन जो जमा मुकस्सर इसकी इस्तेमाल हो रही है। फिर करामुन, करम फजल करम जो हम इस्तेमाल करते हैं उसकी जो जमा इस्तेमाल होती है वो भी जमा मुकस्सर है और वो किरामुन है। अब ये जो तमाम मैंने अभी आपको जमा बताई है, जिबालुन, जिमालुन, इबादुन, बिहारुन, किरामुन, ये सब एक ही वजन के ऊपर है। आप इनकी अगर साउंड्स को देखें तो वो सब साउंड्स एक ही उसमें है, क्योंकि अगर लेटर सेम नहीं है तो हरकत सेम है और अदरवाइज आपको कुछ लेटर्स भी सेम मिलते हैं। जैसे अगर हम इसमें देखें तो हमें सबसे पहले फर्स्ट लेटर की कसरा सेम है तमाम में, फिर सेकंड लेटर पे फतहा तमाम वर्ड्स में सेम है, फिर जो थर्ड लेटर है वो अलिफ है वो तमाम में सेम है, और लास्ट लेटर में गम्मा तन्मी वो तमाम लेटर्स में सेम है। तो यहाँ पर अगर हम इस इन तमाम जमा मुकस्सर का वजन देखें तो वो फियालुन है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर हम इराब के टॉपिक को भी साथ लेकर चलें तो ये जो दो अजान अभी हमने देखे हैं अफालुन और फियालुन जो कि जमा मुकस्सर के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, ये दोनों हमारे पास जो इराब हैं ये मुनसरिफ है क्योंकि इनपे तनवीन आ रही है, और हमने देखा था कि जो तनवीन है वो मुनसरिफ असमा की अलामत होती है। तो यहाँ पे फिर आपको एक और चीज भी पता चलेगी कि अकलामुन जो है वो हमारे पास तीनों हालतों में इस्तेमाल होगा, हालत रफ में अकलामुन, हालत नसब में अकलामन, और आप लोगों ने कुछ अभी जो क्लास का हिस्सा था वो सुना है रिकॉर्डिंग पे। तो अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन आ गई हूँ क्लास के लिए। तो अगर आप लोगों ने जैसे जमा की जो जमा सालम बनाने का तरीका और फिर ये जो वजन की बात है स्पेसिफिकली अभी जो जमा मुकस्सर की हुई है लास्ट में, तो अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल किसी स्टूडेंट का हो, कोई चीज समझना चाहता हो कोई स्टूडेंट, तो वो सवाल पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट वजन की तरफ जाते हैं। ठीक है, जैसे अफालुन और फियालुन ये दो औजान हैं जो कि जमा मुकस्सर के इस्तेमाल होते हैं, और ये दोनों मुनसरिफ औजान हैं, यानी इसमें आपको अकलामुन अगर या अफालुन के वजन पे कोई भी वजन और फियालुन के वजन पे कोई भी वजन वजन पे जो हर्फ वर्ड है वो अगर आपको मिलेगा तो उसमें क्या होगा कि वो आपको तीनों शक्लों में मिलेगा, यानी दमा के साथ भी, कसरा के साथ भी और फतहा के साथ भी, तनवीन होगी उसपे और फतहा कसरा और दमा के साथ आपको वो मिलेगा क्योंकि ये मुनसरिफ है। और अगर जो हम कुछ इंशाल्लाह आगे गैर मुनसरिफ के जब हम औजान देखेंगे तो उसमें फिर जाहिर सी बात है जो गैर मुनसरिफ होते हैं वो जर को कबूल नहीं करते, वो हालत जर में भी फतहा ही के साथ आते हैं। अब हमने तीसरा वजन देखते हैं अफालुन और फियालुन के बाद जो थर्ड वन है, इसमें मैं आपको कुछ औजान बताती हूँ जो कि एक स्पेसिफिक वजन के ऊपर है। इसको अगर आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे वन बाय वन तो फिर आपको आखिर में वजन इसका अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। जैसे कुलूबुन पहला वर्ड, कल्ब की जमा है, दिल के लिए इस्तेमाल होता है। फिर सेकंड नंबर पे उजूरुन, अजर की जमा है, सवाब के लिए इस्तेमाल होता है। फिर नुफूसुन, नफ्स की जमा है, जो कि नफ्स के लिए इस्तेमाल होता है किसी भी इंसान के लिए। फिर उयूनुन, उयूनुन आइन की जमा है, और उयूनुन जो है ये अरबी में चश्मे के लिए भी इस्तेमाल होता है और आंख के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये प्लूरल है आइन से उयून, तो चश्मे के लिए भी ये वर्ड यूज होता है और आंख के लिए भी। फिर नेक्स्ट वर्ड है वुजूहुन। वुजूहुन जो है ये चेहरे की जमा है, अरबी में जो इस्तेमाल होती है वजह से, वुजूहुन। और इन सारे अगर वर्ड्स को आप देखें तो इसमें जो हमारे पास बेसिक वजन आता है इसका, वो फुरूलुन है। यानी इस तमाम जो वर्ड्स हैं ये फुरूलुन के वजन पर हैं। और इसमें देखें, अगर आप इन सब वर्ड्स में रूट लेटर देखना चाहती हैं तो वो फ, आइन और लाम कलेमा के हिसाब से, जो भी जिस भी वर्ड में आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें रूट वर्ड कौन सा है। जैसे अगर हम कुलूबुन की एग्जाम्पल लें तो इसमें काफ जो है ये फा कलेमा हो गया और लाम आइन कलेमा हो गया। फिर वाव सब में सेम है, सारे जितने भी हमने लेटर्स अभी देखे फुरूलुन के वजन में उसमें वाव थर्ड नंबर पे आ रहा है। और फिर नेक्स्ट जो फोर है वो बा है। तो कुलूबुन में जो रूट वर्ड है वो क्या है, कलबुन, काफ लाम बा, ये थ्री लेटर्स जो हैं ये। और इसी तरीके से बाकी अगर आप वर्ड्स को देखेंगे तो उसमें भी आपको रूट वर्ड निकालना आसान हो जाएगा। फिर ये जो फुरूलुन है ये भी जैसे इसके ऊपर दम्मा तन्वीन आ रही है आखिर में, तो ये भी एक मुंसरिफ वजन है जमा मुकसर का। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वजन देखते हैं। इसमें भी कुछ आपको मैं अल्फाज देती हूँ जो आप लिख लेंगी, तो फिर उसका वजन हम आखिर में देखेंगे। जैसे किताब की जमा कुतुबुन इस्तेमाल होता है अरबी में। रसूल की जमा रुसुलुन इस्तेमाल होती है, और सहीफतुन की जमा सुहफुन इस्तेमाल होती है। इसमें अब आप ये चीज देखेंगे, जैसे हमने जमा जो ताए मरबूता के साथ आती है उसको डिस्कस किया कि वो जमा सालिम अगर हम उसकी बनाए तो उसमें हम राउंड ता को अलिफ ता देते हैं बिल्कुल एंड में। तो लेकिन यहाँ पर सहीफतुन की जो जमा है वो जमा मुकस्सर यूज हो रही है सुहफुन। और इस इन तीनों का अगर हम देखें तो ये किस वजन के ऊपर है, फुरुलुन के वजन के ऊपर है। ये तीनों जो अल्फाज हैं वो फुरुलुन के वजन पे, और फुरुलुन भी जो है ये मुनसरिफ वजन है। ये जो अभी आपने चार औजान देखे हैं, अफालुन, फियालुन, फुरुलुन और फुरुलुन, ये जो चारों हैं ये तमाम के तमाम आपको मुनसरिफ औजान मैंने अभी बताए हैं। इसके बाद हम कुछ ऐसे औजान देखते हैं जो कि जमा मुकसर के इस्तेमाल होते हैं और वो गैर मुनसरिफ हैं। इसमें जैसे नबी, अभी जो मैं आपको जमा लिखवाऊंगी वो आप नेक्स्ट लाइन में लिख लें। जैसे नबी की जमा अम्बिया उ इस्तेमाल होती है। फिर वली की जमा अउलिया उ इस्तेमाल होती है, और गनी की जमा अगनिया उ। वली दोस्त को कहते हैं, अल्लाह ताला के जैसे जो बहुत मुकर्रब लोग होते हैं उनको हम औलिया के नाम से बुलाते हैं, तो वो भी क्योंकि अल्लाह ताला के दोस्त होते हैं। और गनी जो अमीर लोग हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है अगनिया उ, जमा इसकी। और अब अगर हम इन तीनों वर्ड्स की का जो वजन है वो निकालें तो ये तीनों वर्ड्स अफ़ईला उ के वजन के ऊपर है। ये इसका वजन है अफ़ईला उ। आइन पे कसरा है, जैसे अम्बिया उ इसमें बा पे कसरा हो रही है, अउलिया उ लाम पे कसरा है, अगनिया उ नून पे कसरा है। तो इसी तरीके से अफ़ईला उ इसका जो वजन है उसमें आइन कलिमा पे आपको कसरा मिल रही है। ठीक,
ये जो वजन है अफ़ईला, ये हमारे पास गैर मुनसरिफ है। और इसमें फिर आप एक चीज़ ये, पहले मैंने औज़ान सारे आपको बताए, उसमें मैंने दम्मा तनवीन आखिर में रखी थी, लेकिन यहाँ पर अम्बिया उ अलिया उ मैं सिर्फ दम्मा पढ़ रही हूँ, क्योंकि जो हमारे पास गैर मुनसरिफ वर्ड्स होते हैं उनको हम तनवीन के साथ नहीं पढ़ते, वो एक हरका के साथ आते हैं। और ये हालत जर में अम्बिया उ सॉरी हालत रफ में अम्बिया उ होगा, हालत नसब में अम्बिया आ, और हालत जर में अम्बिया आ के साथ आएगा। फिर इसके बाद हम देख लें, अगर जो एक और नेक्स्ट गैर मुनसरिफ का वजन देख लें, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ अल्फाज बताती हूँ, अभी वो आप लिख लीजिएगा। गुरबाउ गरीब की जमा है, गरीब अरबी में इस्तेमाल होता है अजनबी के लिए, कोई भी जैसे अजनबी शख्स हो, किसी दूसरे मुल्क में गया है और वो वहाँ का रहने वाला नहीं है, तो उसको आप कहेंगे ये गरीब है यहाँ पे, क्योंकि वो अजनबी होगा, तो उसकी जमा गुरबाउ इस्तेमाल होती है। फिर शुरफाउ शरीफ की जमा, जो नसब में बहुत अच्छे लोग होते हैं, अच्छे नसब वाले होते हैं, उनको बोला जाता है शुरफाउ। फिर उमराउ अमीर की जमा है, मालदार लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। फिर उलमाउ आलिम की जमा है, जो कि इल्म वाले लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। फिर फुकराउ फकीर की जमा है, फकीर जो लोग तंग दस्त होते हैं उनको कहा जाता है। अब अगर हम इन तमाम अल्फाज का वजन देख लें, तो ये तमाम अल्फाज फुआलाउ के वजन पे आते हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि ये जो तमाम अल्फाज अगर कुरान मजीद में इस्तेमाल होंगे, तो ये या तो दम्मा के साथ इस्तेमाल होंगे या फतहा के साथ इस्तेमाल होंगे, कसरा के साथ ये अल्फाज नहीं आएंगे, क्योंकि ये गैर मुनसरिफ है। और इसी तरह अफ़ईलाउ और फुअलाउ, इस वजन पे कुरान मजीद में जितने अल्फाज इस्तेमाल होंगे वो तमाम गैर मुनसरिफ होंगे। तो ये जो अवज़ान है, इनको याद करने से हमारा एक इस चीज़ का भी नॉलेज बढ़ेगा कि कुरान मजीद में जितने अल्फाज इन औज़ान के ऊपर होंगे, फिर हम उनको जज कर सकते हैं कि कौन से मुनसरिफ हैं और कौन से गैर मुनसरिफ हैं। ठीक है, जमा मुकस्सर की हम बात यहीं तक रखते हैं। अब हमारा लेसन जो होमवर्क था लास्ट क्लास में, उसमें मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था कि आपने मुसन्ना की एग्जाम्पल्स ढूंढनी है, तो अब मुझे आप एग्जाम्पल्स आया नंबर के बाद साथ बताएं कि मुसन्ना की आप में से किस किस ने सर्च आउट की एग्जाम्पल्स। या अगर कोई माइक लेना चाहता है तो हैंड रेज कर सकता है कोई स्टूडेंट माइक लेने के लिए। यस, मुजक्कर और मौनस दोनों की एग्जांपल्स थी जो हमारा पिछली क्लास का होमवर्क था। आय नंबर 7 सूरतुल बकरा, काफी नहीं, लेकिन जो काफिरून है वो मुसन्ना में नहीं आता, काफिरून जमा है। जैसे आज आपने जमा सालिम पढ़ा होगा, तो उसमें आपने ये चीज देखी है कि ऊना और ईना की जो साउंड है, ये दोनों साउंड हमारे पास जमा सालिम की होती हैं। वाउनून काफ हमारे पास जो मुसन्ना है उसमें हमने देखा था कि आनी की साउंड अलिफ नून के साथ जो वर्ड एंड अप होगा वो हम मुसन्ना उसको इस्तेमाल करेंगे। सॉरी आई एम मिक्सिंग अप। ओके, हम मुजक्कर मुअन्नस को देख रहे हैं, मुसन्ना को देख रहे हैं। मुसन्ना की अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम्पल्स बताना चाहता है तो अगर किसी ने होमवर्क और अगर नहीं किया तो भी बता दें कि होमवर्क नहीं किया, फिर इंशाल्लाह ये भी आपका नेक्स्ट के लिए होगा। ओके, जो माइक लेना चाहता है वो हैंड रेज करे ताकि फिर मैं माइक छोड़ दूँ। हाँ जी, आया नंबर 282 जो भी है, जिस भी सूरह की है इसमें वजू लई नहीं, ये मोनस की एग्जाम्पल। ठीक है, मैं माइक छोड़ रही हूँ।
आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, अस्सलाम वालेकुम। मैंने बनाई है कि मुस्लिमों उसमें सिंगुलर में बनाई है, वाहिद में, और डुअल में बनाई है मुस्लिमानी और मुस्लिमैनी, और प्लूरल में बनाई है जमा मुस्लिमोना मुस्ली मुस्लिमैना, और ये मुजक्कर में बनाई है वाहिद में, और मौनस में बनाई है मुस्लिमतुन मुस्लिमानी मुस्लिमैनी, ये मुसन्ना में बनाई है, और प्लूरल जमा में बनाई है मुस्लिमातुन मुस्लिमातिन।
ओके, आपने अच्छी कोशिश की, लेकिन जो होमवर्क था वो आपने कुरान मजीद में से ढूंढे थे अल्फाज जो कि मुसन्ना के ऊपर हों। जैसे यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ने लिखा है रजुलैनी, मुसन्ना की एग्जाम्पल 282 आया में है, फिर मर्रथैनी, मर्रथैनी भी जो है ये मुसन्ना है, फिर मुस्लिमानी, ये अब जिन भी आयात से हैं, आयात इन्होंने साथ नहीं लिखी लेकिन ये मुसन्ना की एग्जाम्पल्स हैं, फिर अशु, ये जो वर्ड है ये आई कांट रीड इट, इहदाहुमा इहदाहुमा राइट, ये भी है लेकिन इसमें नून जैसे है वो हजफ हो चुका है, इहदाहुमा, नो इहदाहुमा में दमीर आ रही है, इहदाहुमा जो है वो फिर मुसन्ना की कैटेगरी से थोड़ा सा निकल जाता है, क्योंकि ये जो चीज़ है ये फिर आप इंशाल्लाह जो नेक्स्ट आपकी क्लासेस हैं उसमें आप देखेंगे कि जो दमायर हैं उसमें भी मुसन्ना और जमा ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन वो दमीर की कैटेगरी में आ जाता है, वो फिर आप उसको मुसन्ना ज़रूर कहेंगे, लेकिन अभी जो हमने जैसे मुसन्ना की जो अलामात पढ़ी थी वो अलिफ नून था, तो उसी के दायरे में रहते हुए आपने एग्जाम्पल्स ढूंढनी थी। ओके, अच्छा है, ठीक है, फिर जो जमा का है उसमें भी आपने जो जमा सालिम पढ़ी है और जमा मुकस्सर के कुछ हमने औजान देखे हैं, उसके हिसाब से आपने 5-5 एग्जाम्पल्स ढूंढनी है, जमा सालिम मुजक्कर में 5 मिसालें चाहे हालत रफ की हों चाहे हालत नसब की हों, और जमा मोनस में भी 5 मिसालें आपने देखनी है चाहे वो हालत रफ की हैं चाहे वो हालत नसब की हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन 5 एग्जाम्पल्स आपने जमा सालिम की देखनी है, 5 आपने जमा 5 जमा सालिम मुजक्कर की, 5 जमा सालिम मोनस की, और मुकस्सर जो है जमा मुकस्सर उसकी भी 5 एग्जाम्पल, तो यानी आपने 15 वर्ड्स ढूंढने हैं लेकिन कुरान मजीद के अंदर से ढूंढने हैं और आयात नंबर 7 में लिखने हैं सूरा के साथ, ताकि फिर जब हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करें तो फिर हमारे लिए आसानी हो जाए। ठीक है, कोई सवाल अगर किसी स्टूडेंट का हो, कोई चीज समझना चाहे, कोई क्वेश्चन, होमवर्क रिपीट कर दूं मैं, तो इसमें आपने 5 एग्जाम्पल्स जमा सालिम मुजक्कर की ढूंढ के लिखनी है कुरान मजीद में से, पांच एग्जाम्पल्स जमा मुन्नस सालिम की आपने ढूंढ के लिखनी है कुरान मजीद में से, और पांच मिसालें आपने जमा मुकस्सर की, क्योंकि आप मुकस्सर के औजान पढ़ चुके हैं, 4, 5, 6 औजान आपने आज क्लास में देखे, तो उनके हिसाब से आपको जो भी जमा मुकस्सर मिलती है पांच एग्जाम्पल्स आप वो ढूंढेंगे। तो इस तरह टोटल 15 एग्जाम्पल्स आपने ढूंढनी है कुरान मजीद में से, अल्फाज ढूंढने हैं, उनको लिखना है। और ओके ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, हम यहीं पे क्लास को ख़त्म करते हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।